Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये बात किस हद तक सत्य है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिंदगी में हम रुक जाते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि आगे का रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। उस वक्त अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुने और कभी हार ना माने, तो आप महसूस करेंगे कि आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई जी।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हमारी पूरी सीरीज चल रही है टीनेजर्स के ऊपर। टीनेजर्स अर्थात एडोलेसेंस अर्थात यूथ्स, जिनके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी कुछ अब जानना बाकी है। आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जो टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि उनके खुद के साथ है, रिलेशनशिप विथ वन सेल्फ। इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा संक्षेप में बता सकते हैं तो।
देखिए, एक्चुअली जो टर्म है रिलेशनशिप विथ सेल्फ, उसका मीनिंग है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों यहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, वगैरह वगैरह। उसी के साथ में टीनेज में मेरा शरीर कैसा है, लेकिन टीनेज में इस प्रश्न के और कई मायने हो जाते हैं, जिसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। फिजिकल डायमेंशन में, इमोशनल डायमेंशन में, रिलेशनशिप डायमेंशन में और स्पिरिचुअल डायमेंशन में।
जी,
फिजिकल डायमेंशन में जब शरीर में चेंजेस ज़्यादा आने शुरू होते हैं, तो वो टीनेजर सोचना शुरू करता है कि मैं अब बड़ा होके कैसा दिखूँगा, कैसा लगूँगा, एक्सेप्टेबल होऊंगा कि नहीं, दूसरे मुझे ठीक तरह से देख पाएंगे या मुझ पे कमेंट करेंगे। और वो एक्चुअली सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन टीनेजर के मन में ये बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ग्रोथ सडनली होती है।
ट्रू।
अगर उसमें वो अपने आप को सक्षम महसूस करता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी ग्रोथ एडिक्वेट है, मेरी ऐसी ग्रोथ है जिसकी वजह से मैं दूसरों को मन लुभावन महसूस होता हूँ या मैं खुद के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो उससे जो उत्पन्न हुए नेगेटिव विचार हैं वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए उसके परिवार में या बाहर वाले बचपन से उसको कहना शुरू करते हैं कि तुम तो देखने में ऐसे ही हो, या तुम्हारा रंग सांवला है, या तुम छोटे साइज के हो, या तुम्हारी बॉडी डेवलप नहीं हुई है, तुम आगे क्या करोगे, तुम्हारा, और अगर कंपैरिजंस भी होने शुरू हो जाए, तुम्हारा भाई या बहन या कज़न या पड़ोसी ऐसा दिखता है, देखो वो कितना स्मार्ट है, तुम स्मार्ट नहीं लगते हो, तो वहीं से उसका अपने बारे में जो मन में एक इमेज है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप पाएंगे कि जो एडोलेसेंट हैं वो बहुत बार, कई बार पूछते हैं मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, या अपने फ्रेंड से पूछते हैं, पेरेंट से कई बार नहीं पूछ सकते, या कई बार छुप छुप के शीशे को देखते हैं। अगर मान लीजिए एक आधा पिंपल भी फेस पे निकल आए तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं,
पैनिक सिचुएशन हो जाती है ये,
क्योंकि उनको लगता है कि ओ अब इसके बाद मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पूरी जिंदगी जो है उस चीज के आसपास घूमने लग जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ठीक ठाक है, दूसरों को भी ठीक ठाक लगता हूँ, तो फिर सेकेंड डायमेंशन जो है जिसमें कि वो इमोशनली कैसे हैं, क्या बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, क्या बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, मूड्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, या वो हर चीज़ में समझ पाने में सक्षम होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई तो भी रेजिलिएंट होते हैं। दूसरे व्यक्ति ने जो कमेंट किया उस कमेंट से वो जल्दी परेशान नहीं होते हैं। तो ये उनके इमोशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। कई बच्चे जिन्हें कि या तो बचपन में पनपने का मौका नहीं मिला या उनके रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छे नहीं रहे, चाहे वो अपने पीयर्स हैं, अपनी उम्र के बच्चे हैं या बड़े हैं, और मान लीजिए एक परिवार में पेरेंट्स का आपस में बहुत झगड़ा चलता है तो वहाँ पे बच्चों के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। अगर मान लीजिए बच्चे को हम नेगेटिव कमेंट्स हर बार कहते हैं, एक बात हुई तो उसको जनरलाइज करते हैं, उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो कहा तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो उसका अपने बारे में जो इमोशनल कॉन्सेप्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे जो कि बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाते, स्पेशली वो बच्चे जिनको कि डिसलेक्सियाज हैं, उनको अगर कहा जाता है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उनको वही चीज़ अपने बारे में लगनी शुरू हो जाती है। तो उस वजह से उनका जो इमोशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है और छोटी ही चीज़ बाद में टीनेजर में बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस समय वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से उनको छोटी छोटी बातें थोड़ी ज़्यादा चुभनी शुरू हो जाती हैं, तो वो उस चीज़ को उतनी जल्दी संभाल नहीं पाते। तीसरा है रिलेशनशिप्स का। हम जो अपने बारे में सोचते हैं और जो हमारे बारे में दूसरे सोचते हैं, उसका टेस्टिंग ग्राउंड जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स है। हम किस तरह से दूसरों के और अपने बीच में एक ब्रिज को बना पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, दूसरे की बात को सुन पाते हैं, विचारों का लेन देन कर पाते हैं एक ऐसे माहौल में जिसमें ना मैं थ्रेटन महसूस करता हूँ ना मैं दूसरे को थ्रेटन करता हूँ। एक्चुअली ये एक आर्ट है, देखा जाए तो इतना स्वतः भी नहीं आता, हालांकि हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अगर संबंध अच्छे बन रहे हैं सब लेवल पर, परिवार के लेवल पर, सिबलिंग्स के लेवल पर, टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस उम्र में फ्रेंड्स का जो फीडबैक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर वो चीज़ ठीक बन रही है तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ मेरे रिलेशनशिप अच्छे बन रहे हैं, मैं सक्षम हूँ। अल्टीमेटली इन सब का एक ही गोल है कि उस व्यक्ति को एज एन इंडिविजुअल सक्षम महसूस करवाना, ताकि वो जिंदगी का जो नेक्स्ट पड़ाव है, पढ़ाई खत्म हुई, काम शुरू किया, वर्क रिलेटेड, अकेले थे, अब कोई पार्टनर मिला तो ज़्यादातर शादी की तरफ, और उसके बाद एक नई यूनिट को एस्टैब्लिश करना। तो नई यूनिट एस्टैब्लिश होने से पहले अगर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है हर रूप से, तभी वो नई यूनिट को आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है, या हम कहते हैं कि आप सक्षम नहीं हो, तो उसको अंदर से बड़े डाउट्स होने शुरू हो जाते हैं, और वो डाउट्स जो हैं वो डाउट्स कई बार फ्यूचर में जाके बहुत अधिक तंग करते हैं। कुछ बच्चे विड्रॉ कर जाते हैं इस दौरान में, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि वो बनना चाहते हैं। कुछ हैं जो कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रखना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं। कुछ हैं जो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, इमोशनली भी ब्लैकमेल करके या गुस्से के साथ साथ। कुछ हैं जो थोड़े से दब्बू हो जाते हैं, और ये सब जो बातें हैं टीनेजर्स खुद भी समझते हैं, दूसरों से भी उनको फीडबैक मिलती है, और उस सब के साथ साथ उसका एक अल्टीमेट होलिस्टिक होल बनता है। चौथी डायमेंशन जो है स्पिरिचुअलिटी की, आमतौर पर इसके बारे में बात होती नहीं है।
अच्छा।
लेकिन यही समय है जब बात होनी चाहिए, क्योंकि इन सब का एक बाहरी पर्पस है, लेकिन अंदर से जब तक खुशी नहीं होगी तो बाहरी पर्पस का कोई फायदा नहीं है। आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं हैं, आपके पास सब कुछ है लेकिन अंदर से किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। आप वैसे देखने में सक्सेसफुल हैं लेकिन आपको अंदर से लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया या कुछ नहीं किया। तो वो सब को समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक मतलब अगर हम देखें तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या डायमेंशन में हूँ, क्या मेरे अंदर प्रतिभाएं हैं, क्या गुण हैं, मैं किस प्रकार से अपने आप को कितना सक्षम महसूस करता हूँ उन गुणों के साथ, उन डायमेंशंस के साथ, किस प्रकार से मैं अपने में जो महसूस करता हूँ वो दूसरों तक ला पाता हूँ
जी।
ये जो गुण हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारी इंटरनल शक्तियाँ हैं, इनके बारे में बहुत कम बात होती है। उसी के साथ साथ अपने मन को स्थिर कैसे करना, कंटेंटमेंट कैसे लानी है, गुणों को कैसे आदान प्रदान करना है, मेरी हिडन पावर्स क्या हैं, मैं क्या क्या जीवन में अचीव कर सकता हूँ, फिजिकली भी इमोशनली भी, और अगर अचीव नहीं भी होती तब भी मैं अपने आप को कैसे सक्षम महसूस कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों के बियॉन्ड मेरा पर्पस ऑफ लिविंग क्या है। ये बातें जो हैं ये कई बार टीनेजर के मन में आती हैं, कुछ बच्चों में बहुत बचपन में भी आती हैं, लेकिन उनके आमतौर पे या तो आंसर्स नहीं मिलते या घर वाले बहुत डर जाते हैं कि अरे इस उम्र में तो इसको पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, और ये इस तरह की बातें कर रहा है, कहीं सन्यासी ना बन जाए। एक्चुअली इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा कुमारीज में कि कोई भी एज गलत नहीं है स्पिरिचुअलिटी को सीखने की। स्पिरिचुअलिटी का मतलब परिवार से कटना नहीं है, परिवार में रह के परिवार और लौकिक की बातों को लेकर पढ़ाई कर कर काम करते हुए हम अपने जीवन में वो गुण, वो वैल्यूज़ कैसे ला सके जिससे हम एक अच्छा नागरिक भी बने, अपने अंदर भी सशक्त बने, और अगर कोई बाहरी रूप से परेशानी आ रही है उसके साथ भी डील कर पाए। और मैं तो समझता हूँ कि वैल्यूज़ जो हैं ये बचपन से क्या स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए, और वैसे तो वैल्यूज़ इन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स भी हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, जिसमें कि स्कूल्स में जाकर कैसे छोटे बच्चों को भी उनके रूप में, गेम्स के रूप में, या किस तरह से उस समय में उनको जीवन में फ़ायदा मिलेगा, मेमोरी कैसे बेटर होगी, कंसंट्रेशन कैसे बेटर होगी, अगर किसी वजह से आपके साथ दूसरे ने गलत बिहेव किया तो आप कैसे उसके साथ सही बिहेव कर सकते हैं, या मान लीजिए आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। ये एक्चुअली लाइफ स्किल्स हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको तो उसी समय से सिखाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, अपने मन को स्थिर कैसे करना है, उसको फोकस कैसे करना है, उसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ानी है, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो चीज़ें याद रहेंगी, एंग्जाइटी नहीं हो, और शोध हुई हैं कई सालों से कि जब आप एक मेडिटेशन ही नहीं एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, जिसका मतलब यह है कि मैं सोचता क्या हूँ, मैं खाता क्या हूँ, मुझे यहाँ पे क्या खा रहा है, मैं सोता कैसे हूँ, और किस प्रकार से मैं अपने और दूसरों के साथ संबंध रखता हूँ
जी,
वो अगर लाइफस्टाइल को हम सीख सकें तो हम जीवन की बातों को आसानी से समझ भी पाएंगे, डील भी कर पाएंगे। तो वो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो इस उम्र में अगर कोई अपनाना शुरू कर दे, जीवन में सीखना शुरू कर दे, तो उसके लिए इन चीज़ों से डील करना कई बार बहुत आसान हो जाता है।
और डॉक्टर साहब, एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी बच्चे को इस तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे भेजना, क्योंकि फियर रहता है कि कहीं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना ले ले। आजकल के यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफस्टाइल तो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है।
देखिए, अगर आप यंगस्टर से पूछें, उनमें से बहुत से हैं जो कि बेमानी चीज़ों की परस्यूट को जीवन नहीं मानते। जब आप बाहरी रूप से अपने जीवन में स्टिमुलेशन लाते हैं तो वो कुछ देर के लिए आपको वो खुशी कह लीजिए या स्टिमुलेशन कह लीजिए वो देती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपना काम करना बंद कर देती है, फिर ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो बहुत जल्दी ही आप उससे उबना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आई है उसके मॉडल्स को बार बार इसीलिए बदला जाता है क्योंकि पुरानी चीज़ से लोग उबना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप जीवन को हर रोज़ एक नए रूप में देख सकें, आप जीवन में एक सशक्त और एक पॉजिटिव नज़रिया बना सकें, अगर कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही तो उसे किस प्रकार से नए ढंग से देखना है इसको देख सकें, वही स्पिरिचुअलिटी है।
ओके।
अपने काम से हट जाना, अपने परिवार से हट जाना और उस चीज़ में ही सिर्फ खो जाना, कहीं भी उसे स्पिरिचुअलिटी नहीं कहा जाएगा।
okay.
उसे सन्यास कहा जाएगा।
करेक्ट।
तो यहाँ पे सन्यास की नहीं बात हो रही, यहाँ पे उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लाकर जीवन को सही रूप से जीने की बात हो रही है।
ओके।
और वहाँ पे पेरेंट्स, हाँ डर जरूर कई बार होता है लेकिन वहीं पे बैलेंस की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पढ़ना बंद कर दूंगा क्योंकि अब मैं ध्यान लगा रहा हूँ, वो नॉर्मल नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं सारा दिन एक गुफा में बैठ के सिर्फ या कि कमरे में बैठ के सिर्फ म्यूजिक सुन रहा हूँ और मुझे किसी से लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे बहुत एलिवेटेड कॉन्शियसनेस चाहिए, वो भी नॉर्मल नहीं है। एंड इंसिडेंटली एडोलेसेंस में कई बार ये भी पाया गया है कि कुछ लोग इस प्रकार से खो जाते हैं और कई बार उनमें कुछ मानसिक परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं अगर वो उसी में खो जाते हैं तो।
okay.
अगर वो बाहर के जीवन के साथ कट जाते हैं, अगर वो 24 घंटे उसी में रहते हैं तो उसे नॉर्मल नहीं माना जाएगा, उसे जीवन जीने के एक ढंग को अपनाते अगर हैं, वही सब करते हुए जो दूसरे लोग कर रहे हैं लेकिन एक नए रूप में, तो वो पूरी जिंदगी आपके साथ चल सकते।
डॉक्टर साहब आप एकदम सही कह रहे हैं, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, पहले तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि एज अ पेरेंट क्या मैं अपने बच्चे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होने दूँ या ना होने दूँ, पर अब मुझे लगता है हमारी सारी ऑडियंस इस पर कन्विंस हो चुकी है कि स्पिरिचुअलिटी को अगर यूथ में या फिर बच्चों की लाइफस्टाइल में अगर थोड़ा सा समय देकर उन्हें उस चीज़ के बारे में जागरूक करें तो उनकी लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है।
जी
डॉक्टर साहब, कुछ ऑडियंस के हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं।
जरूर।
मेरा नाम रीना है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मुझे अपने बच्चे को लेके कुछ क्वेश्चन करने हैं। मेरा बच्चा अपने ड्रेस को, अपने स्टाइल को, बालों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है अगर उससे कोई कुछ बोल दे तो आप उसका कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं?
नमस्ते, मैं सुजाता नवी मुंबई से। मेरा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे, आजकल बच्चे माँ बाप के सुनते नहीं और मैं चाहती हूँ कि बच्चों में आध्यात्मिक वैल्यूज़, धार्मिक वैल्यूज़, अच्छे संस्कार किस तरह से उन्हें बढ़ाया जाए ताकि कल वो अच्छे नागरिक बन सके।
डॉक्टर साहब इनका सवाल कुछ इस प्रकार है, ये अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि इनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा लुक्स को लेकर के क्रिटिकल हो चुका है और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा भी उनको उसके लुक्स के बारे में बोला जाए तो वो बहुत ओवर रिएक्ट करता है, तो ये किस हद तक इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि ये अपने बच्चे के अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, गुड क्वालिटीज़ उनके अंदर भरना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता क्योंकि पेरेंट्स की बात को शायद वो एक एज अ लेक्चर लेंगे लेकिन अगर थर्ड पर्सन आकर के उन्हें ये चीज़ समझाए तो शायद वो इस चीज़ को सीरियसली ले करके और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो इन दोनों सवालों में किस तरह से एक बच्चे की सही ग्रोथ हो उसके बारे में ये सवाल है, इसका कुछ जवाब अगर आप दे सकते हैं तो।
देखिए लुक्स के बारे में ऑब्वियसली टीनेज इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके लुक्स है वही दूसरी लोगों को दिख रही है, तो वो विंडो ऑफ देमसेल्व्स है टू द वर्ल्ड, और अगर वो विंडो ही मैली है या ठीक नहीं है तो दूसरे उनके बारे में क्या समझेंगे। सच्चाई ये है कि लुक्स बदलती रहती हैं, जो आज पिम्पल है वो हफ्ते बाद नहीं रहेगा। उम्र के साथ साथ हमारा फेस भी बदलता रहता, वेट भी बदलता रहता है, फैशंस भी बदलते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली ना लें कि वो आपको स्ट्रेस आउट कर दे, क्योंकि ये एक सच्चाई ज़रूर है कि अगर आप टेंशन में हैं तो आपकी लुक ज़रूर ख़राब लगेंगे, और अगर आप रोए हैं तो ज़रूर चेहरे पर दिखेगा, उसकी वजह से अगर आप सोए नहीं हैं तो वो ज़रूर चेहरे पर दिखेगा। कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन है और उसको सलूशन को देखने के लिए ये देखें कि बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या वो सचमुच में ऐसी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, और उसके बाद आंकलन करने के बाद जो भी करना है उसको किया जाए, लेकिन परेशानी के रूप में नहीं। सेकंड, कई बार हम सिर्फ लुक्स पे रुक जाते हैं, अगेन वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो हमें मिलता है वो हमारी नॉलेज को, हमारे बात करने के तरीके को, हमारी पर्सनालिटी को उससे भी उतना इम्प्रेस्ड होता है जितना कि लुक्स से, इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स। तो लुक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ लुक्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो भी चीज़ ठीक नहीं लग रही, पहले ये देख लें कि सचमुच क्या आपका आंकलन सही है या शायद आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स उस समय में डांटे बिना उसे बार बार ये कह के तू तो अपने पर ही ध्यान रखते हो या रखती हो, समझें कि उसके लिए लुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, बैठ के जो उसके सोल्यूशन है एटलीस्ट बताएं या दिखाएं कि वो उसके बारे में भी उतना ही कंसर्न्ड है जितना कि वो टीनेजर है, तो दोनों मिल के उस पड़ाव को पार कर सकेंगे और कुछ दिनों बाद शायद बैठ के हंस भी सकेंगे कि इतना ज़्यादा वो अपनी लुक्स को लेके परेशान थे। वैल्यूज़ को सिखाया कम जाता है, वैल्यूज़ को अपने आप ही सीखा जाता
है। ओके,
तो अगर आप में वैल्यूज़ हैं, दूसरे वो देख के अपने आप ही उन वैल्यूज़ को अपने अंदर भरेंगे। और ये देखा जाता है कि अगर पेरेंटल वैल्यूज़ हैं तो उस परिवार में दूसरे बच्चे भी उसी तरह की वैल्यूज़ को अपनाएंगे। जैसे कि घर में एक तरह का खाना बनता है, तो कई बार सालों साल लोग कहते हैं कि मेरी माँ के खाने जैसा स्वाद कहीं और नहीं है। तो अगर वो वैल्यूज़ हैं, आप खुद दे सकते हैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा, या कई जगहें हैं जैसे ब्रह्म कुमारीज में समर कैंप्स होते हैं, या बच्चों के लिए स्पेशली कैंप्स होते हैं, या बच्चों में एज एन एजुकेशन उसको कैसे लिया जा सकता है, या करिकुलम में कैसे लाया जा सकता है
जी?
या खेल खेल में वैल्यूज़ को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। इस उम्र में उसे भारी ना बनाएं, उसे लेक्चर ना दें, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के द्वारा, स्टोरीज़ के द्वारा उसको सिखाया जा सकता है। तो मैं जो समझता हूँ कि माउंट आबू में और जो ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स हैं उनमें भी एजुकेशन के अंदर वैल्यूज़ को कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और उनके द्वारा भी रहते हुए घर में, पढ़ते हुए स्कूल में, जीते हुए ज़िंदगी को, वैल्यूज़ को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में बात होती है।
वेरी नाइस डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें पहल करने की ज़रूरत है। एज अ पेरेंट, अगर आप अपने बच्चे के अंदर में स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा भी इनकलकेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। आज हमारे ब्रह्मा कुमारीज में भी बहुत सारे ऐसे कैंप्स होते रहते हैं, समर कैंप्स होते हैं, जिनमें हम अपने बच्चों को डाल करके और वहाँ पर उन बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ डाल सकते हैं जिसके लिए आज हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे
जी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? बहुत सारे रिश्तों के साथ आज हम जिंदगी को जी रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता भी होता है जिसे हम भूल चुके हैं, वो है रिश्ता अपने आप के साथ। आज हमने जाना कि किस तरह से अपने आप के साथ में एक ऐसा रिश्ता क्रिएट करें जिससे आप खुद को भी मजबूत बनाएंगे और अपने आसपास के सिचुएशंस को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो टीन्स या फिर यूथ की जिसकी हम बात कर रहे हैं उस समय पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी को उनके ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनकी ज़िंदगी का होलसम ग्रोथ होने लगेगा और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी का असली मकसद वो जान पाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।